Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
Namaskar, Market Mantra ki tazank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hamesha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui karobari, aarthik aur share bazaar se sambandhit taza khabron ko lekar hazir hain. Hamare saath khabron par charcha ke liye studio mein aaj aamantrit hain वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार. दीपशिखा जी नमस्कार.
कार्यक्रम नमस्कार मनोज जी.
आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से जिसे लेकर मौजूद हैं निशित कुमार.
द हेडलाइंस. बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंड नियरली अनचेंज्ड. सेंसेक्स ड्रॉप्स 46 पॉइंट्स. निफ्टी क्लोजेस एट 24,334. कैबिनेट अप्रूव्स न्यू हाईवे फ्रॉम शिलोंग टू सिल्चर with outlay of 22,864 crore rupees. Also approves fair and remunerative price of sugar cane for sugar season 2025-26. And global crude oil prices continue downward trend. Brent crude trades at $63.65 per barrel.
घरेलू शेयर बाजार आज भी बिना किसी खास उतार चढ़ाव के बंद हुए. सेंसेक्स 46 अंक लौट का. निफ्टी 24,334 दर्ज हुआ. कैबिनेट ने 22,864 करोड़ रुपए लागत वाले शिलांग से सिलचर तक नए राजमार्ग के निर्माण की योजना को मंजूरी दी. साथ ही 2025-26 गन्ना फसल सत्र के लिए किसानों को गन्ने के लिए समुचित मूल्य दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली. और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम और नीचे आए. ब्रेंट क्रूड का भाव घटकर $63.65 प्रति बैरल पर फिसला. घरेलू शेयर बाजार में आज भी निवेशक सावधानी की धारणा में के साथ कारोबार करते रहे. ना बहुत ऊपर सूचकांक गया ना ही बहुत नीचे आया. अपने पूर्व स्तर के आसपास ही प्रमुख सूचकांक बंद हुए. हालांकि छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों को घाटा भी उठाना पड़ा. अच्छी खासी बिकवाली विस्तृत बाजार में रही. कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 46 अंक घटकर 80,242 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 दो अंकों की मामूली कमी के साथ 24,334 दर्ज हुआ. विस्तृत बाजार की ओर चलें तो वहां पर अच्छा खासा रुझान बेचने का रहा. यानी आज मुनाफा वसूली की गई ऐसा दिख रहा है. बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.7% की गिरावट हुई जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 1.7% से अधिक घाटे के साथ बंद हुआ. श्रोताओं हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि कल महाराष्ट्र दिवस है. इसके उपलक्ष्य में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सार्वजनिक अवकाश के कारण बंद रहेंगे. इक्विटी इक्विटी डेरिवेटिव सिक्योरिटीज लेनदेन और करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में कारोबार कल नहीं होगा. उधर कमोडिटी मार्केट में प्रातःकालीन सत्र में तो सार्वजनिक अवकाश का असर दिखेगा, कारोबार नहीं होगा. लेकिन शाम 5 बजे से लेकर रात 11:30 बजे तक आम दिनों की तरह ही कारोबार हो सकेगा.
सो बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्सेस एंडेड ऑन अ फ्लैट नोट इन टुडेज लैकलस्टर ट्रेडिंग सेशन. द 30 शेयर इंडेक्स ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स ड्रॉप्ड 46 पॉइंट्स टू क्लोज एट 80,242. द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 50 स्लिप्ड मार्जिनली बाय 2 पॉइंट्स टू सेटल एट 24,334. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange ended with deeper cuts. The mid-cap index declined over 0.7% and the small-cap index fell over 1.7%. In the Sensex Index, 15 out of 30 companies registered losses. And in the top laggards were Bajaj Financial Services, which slid over 5.4%. Bajaj Finance slipped almost 5%, and Tata Motors dropped over 3.2%. Among the top gainers, Maruti gained 3.4%, Bharti Airtel rose over 2.1%, and Sun Pharma advanced 1.4%. In the sectoral indices of the Bombay Stock Exchange, 15 out of 21 sectors ended in the negative territory. In the top laggards, industrials fell 1.2%, services lost 1.1%, and commodities slipped over 0.9%. Among the top gainers, realty climbed 1.8%, telecommunications advanced over 0.9%, and tech added 0.23%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,938 companies declined, 975 advanced, and shares of 150 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 24 companies hit their 52-week high, while 30 companies hit their 52-week low.
नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 76 पैसे मजबूत हुआ, 84.49 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. यदि हम रुपए के कारोबार के चलन पर ध्यान दें तो एक दिवसीय कारोबार में नवंबर 2024 के बाद ये रुपए की सबसे अधिक मजबूती है, जबकि 2025 में 76 पैसे मजबूत होना पहली बार हुआ है. उधर दुनिया की अन्य छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक अंतर दिवसीय कारोबार में 99.37 पर चल रहा था. दीपशिखा जी, बाजार में यदि हम आज की गतिविधि देखें या कल भी देखें, तो कल तो थोड़ा उतार चढ़ाव दिखा था, लेकिन आज लगभग फ्लैट स्टोन पूरे दिन बना रहा. निवेशक किस धारणा में व्यस्त या कह लें कि उलझे हुए दिख रहे हैं?
देखिए, इतना कुछ चल रहा है इस समय कि बाजार जो है अभी उतना फोकस में नहीं है निवेशकों के. ओवरऑल जो है देश में जो पॉलिटिक्स है और जो सुरक्षा से संबंधित चीजें हैं, तो ये जो पाकिस्तान के साथ ये भय, ये आकांक्षा कि शायद युद्ध होने जा रहा है, ये एक माहौल ऐसा पूरे देश में बना हुआ है. तो इस समय बाजार में कोई नए निवेशक जो है कोई नया निवेश करके रिस्क नहीं लेना चाहता है, कॉशियस है बराबर. लेकिन अगर आप देखें तो फ्लैट रहा है, कोई बिकवाली ऐसे बहुत ज्यादा वो भी नहीं आ रही है. तो नर्वसनेस भी नहीं है कि बिकवाली हो रही, लेकिन हाँ कॉशन है कि आगे अब हम देखेंगे कि क्या माहौल रहता है, उसके बाद हम निवेश करेंगे या बेचेंगे.
दीपशिखा जी, यू टच्ड अपॉन द वॉर ऑफ फियर व्हिच इज काइंड ऑफ ग्रिपिंग द इन्वेस्टर्स एंड And resultantly, the markets being flat. But one thing which I would like to touch upon or mark here is that we have seen the markets decline continuously over the past few months. And over the past few sessions, let's say over the past 6, 7, or 8 sessions, the market were kind of being very buoyant. In fact, on one particular day, if you remember some 8, 10 sessions back, the Sensex almost jumped 2,000 plus points. Now, of course, this war factor is there, but talking of the global factors here, especially about the Trump factor here, how much do you see this thing kind of factoring in the current market conditions?
So, see, if you've seen the market movement over the past, say, few months, before the new government came into place in United States, and then subsequently the policy announcements that have been coming, this entire geopolitical uncertainty in global world and the global economy, that fed into a lot of nervousness in the market. And the euphoria that we saw some time back in the market, there was some expectation building up that probably India will strike out a deal, and there is a expectation that India may not remain impacted so much by the tariffs that US has imposed, and we now have a 90-day reprieve that has been given, so something would be worked out during that time. But this is something which happened at home And then this whole fear of a full-fledged war between the two neighbors, that has again sort of gripped the market. But if you actually see markets today, they have in fact held firm.
Mm-hmm.
You know, the nervousness of, you know, an imminent war happening is not, at least the markets are not reflecting that. So mm-hmm. perhaps I think the, from my understanding, the markets, I think the sense is that probably this war may not be so damaging for, you know, the Indian economy. And India is working out the trade deal. So overall, maybe the impact may not be that much.
Mm.
So I think all these factors combined, investors have sort of decided to strike, a note of caution. And
balance
they
have, note.
Yeah, kind of. Balance note. Yeah. So they are not nervous. They're not selling out. There's no panic selling.
Mm-hmm.
There's no buying of
as
that
well.
As
yes.
well. Yeah.
Yes, yes. Very rightly you said that there is no such panic as we saw in the past, maybe 3-4 months when the Trump presidency took over for the second term. But having said that, the euphoria that we saw over the past 5-6 sessions and now the ebbing of that or kind of flattening of that or plateauing of that, do you see that euphoria once again picking up in the coming days kind of?
I think this caution which the markets are sort of exercising, it's in a way good, because if you see the US economy, the latest data shows that there was a contraction. So the US economy is also, people are closely watching what happens, what would be the impact of the, tariffs or whatever these bilateral deals
mm-hmm.
that the US is doing on the US economy per se. And that will drive at least a significant part of the economy, not just in India. Of course, we don't have so much of export exposure, but other economies definitely. So how would the global economies fare? So global economy, if the growth is slowing, that would have some impact on the Indian economy. So I think investors are cautious,
yes.
not nervous, but definitely cautious.
Very cautious.
Yeah.
Yes.
यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे दीपशिखा जी कि जो FIIs हैं या FDIs हैं उनका रुझान पहले हमने देखा था कि सिरे से भी क्वाली की जा रही थी और जो DII यानी अपने जो देश के संस्थागत निवेशक हैं उनकी ओर से खरीदारी लगातार चल रही थी. साथ ही जो नए स्मार्ट कह लें कि रिटेल कंप्लीट रिटेल जो निवेशक थे कोविड के दौरान जिनकी संख्या तेज गति से बढ़ी थी वो बाजार में सक्रिय रहे. अब पिछले कुछ सत्रों में FIIs फिर से लौटे हैं
जी.
तो ये लौटना लंबा चलने वाला है या लग रहा है कि आने वाले दिनों में फिर वो बिकवाल ही दिखेंगे?
देखिए, इस समय अगर आप विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को देखें तो अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था की हालत देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था काफी मजबूत स्थिति में नजर आती है. तो यहां पर निवेशकों के लिए, क्योंकि जब यहां पे बिकवाली चल रही थी तो ये अंदेशा था कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो शायद मजबूती की तरफ बढ़ रही है, ब्याज दरें भी जो है घटने शुरू हो गई हैं, तो इसलिए FIIs जो है हमने देखा उनका यहां से वो निकल रहे थे. अब जो स्थिति है, अब स्थिति बहुत बदल रही है क्योंकि टैरिफ की वजह से इन्फ्लेशन जो है वहां पे बढ़ने की आशंका है. इकोनॉमी जो है वो पहले ही लग रहा है कि स्लो डाउन हो जाएगा. भारतीय अर्थव्यवस्था अगर आप देखें तो बहुत स्टैंड आउट करती है, मजबूत स्थिति में है. और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स अगर आप देखें तो वो सारे फैक्टर्स जो हैं अभी काफी अच्छी स्थिति में है. तो भारत एक निवेश की दृष्टि से किसी भी विदेशी निवेशक के लिए एक अच्छी स्थिति में है. और ऐसी आशा है कि बायलैटरल डील जो है अमेरिका के साथ हो जाएगा तो भारत में और भी कंपनियां आकर के, विदेशी कंपनियां निवेश करेंगी जो चाइना से अपना डाइवर्सिफिकेशन शायद करना चाहती हैं. एप्पल ऐसा बोल चुका है ऑलरेडी. तो भारत की स्थिति जो है काफी मजबूत लग रही है. तो वो मजबूती ही ये दर्शा बाजार में दिख रही है.
यहाँ रुपए की ओर भी हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे. रुपए में कल अच्छी खासी गिरावट हुई लेकिन आज काफी अधिक मजबूत हुआ है रुपया. रुपए का ये स्तर क्या दर्शा रहा? डॉलर की जो कमजोरी है उसका ये परिणाम है या कोई दूसरे भी कारक हैं जो रोल निभा रहे हैं?
देखिए, ज्यादातर जो मूवमेंट अगर आप देखें रुपए में रहा है पिछले कुछ समय से, वो रुपए के मूवमेंट के बजाय वो डॉलर के मूवमेंट से उस पर निर्धारित रहा है. तो वही चीज अभी भी दिखाई दे रही है. दो तीन फैक्टर्स हैं. एक तो जो रुपए पे अभी बायलैटरली जो हमारा स्थिति चल रहा है, जिस तरह का टेंशन है, उसका भी थोड़ा असर है. दूसरा, डॉलर की भी स्थिति जो है उसका असर हो रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था और खासतौर से इन्फ्लेशन वहां पर, उसको लेकर के बहुत कंसर्न्स हैं.
And in some other news, the Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved a new highway from Shillong to Silchar with a cost of 22,864 crore rupees. Briefing media in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that this project will prove instrumental in the development of the northeastern region. CCEA also approved fair and remunerative price of sugarcane for sugar season 2025-26 at 355 rupees per quintal for the farmers. Mr. Vaishnaw said that decision will benefit 5 crore sugarcane farmers as well as 5 lakh workers employed in the sugar mills and related ancillary activities. And all India Consumer Price Index for Agricultural Laborers, that is CPIAL, for March eased to 3.73% as compared to 7.15% in the same month previous year. According to the data released by the Ministry of Labour and Employment today, the All India Consumer Price Index for Rural Labourers, CPIRL, also eased to 3.86% as compared to 7.08% in the corresponding period of last year. The data showed that sub-indices including pan, supari, fuel and light clothing, bedding and footwear and miscellaneous registered marginal rise, while food witnessed decline during March as compared to the previous month for both agricultural and rural laborers.
यहाँ पर दोनों खबरों पर आपकी प्रतिक्रिया हम समझना चाहेंगे, हमारे जो आम श्रोता है उनके उनकी दृष्टि से, कि ये जो आंकड़े हैं अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य पर आधारित कृषि श्रमिकों के लिए, ये क्या दर्शा रहे हैं?
देखिए, अगर हमने देखा कुछ समय पहले तक एक डाइवर्जेंस था, रूरल गांव में जिस तरह की महंगाई दर देखी जा रही थी और शहरों में जिस तरह की महंगाई दर देखी जा रही थी, तो ये था कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, अगर वहां पे महंगाई दर ज्यादा रहती है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वहां पर लोगों के ऊपर रूरल स्ट्रेस है और उसकी वजह से उनकी खरीदारी जो है वो कम होती है, क्योंकि उनकी इनकम्स पे असर पड़ता है. उसका असर जो है हम डिमांड में देखते हैं, कि हमने देखा कुछ समय तक रूरल डिमांड जो है वो काफी इम्पैक्टेड रही है. तो ये अब चूंकि ओवरऑल भी इन्फ्लेशन जो है डिक्लाइनिंग ट्रैजेक्टरी है, मानसून से भी उम्मीद अच्छे मानसून की जा रही है, तो कृषि क्षेत्र का भी ऐसी आशा है कि उत्पादन अच्छा होगा. तो उस सारे फैक्टर्स जो हैं उसके तहत ये दर जो है ये गिर रही है. ओवरऑल जो इन्फ्लेशन गिर रहा है उसके तहत ही है. तो ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक अच्छी खबर है कि जो एक पिछले समय से स्ट्रेस था उस पे अब जो है उनको राहत मिल रही है.
हम राजमार्गों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे. सरकार ने एक नए राजमार्ग के निर्माण के लिए मंजूरी दी है. एक कहले अटल जी की सरकार के जमाने में देश के चारों कोनों को एक सूत्र में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चली थी. यदि हम आज के सड़क यातायात को देखें तो रेल यातायात और वायु यातायात दोनों को ध्यान में रखते हुए हमारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है या जो राज्यों के राजमार्ग हैं वो किस रूप में परिवहन पूरे सेगमेंट को एक नया स्वरूप दे रहे हैं, ये समझना चाहेंगे.
देखिए, ये जो कॉरिडोर जो आज कैबिनेट ने जिसको मंजूरी दी है, ये बहुत ही, चूंकि ये नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्ट और नॉर्दर्न जो ईस्टर्न पार्ट जो है देश का, उसमें कनेक्टिविटी जो है उस पे आप आपने अगर देखा होगा सरकार का बहुत खास ध्यान रहा है वहां पे सड़कों के निर्माण को लेकर के, तो ओवरऑल डेवलपमेंट जो है उस क्षेत्र का उसको किस तरह से बढ़ावा दिया जा सके, वहां औद्योगिकरण को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सके, तो सड़कों का जो निर्माण है उसका बहुत बड़ा योगदान है, ना कि सिर्फ आम जनता के लिए बल्कि वहां पे निवेश और औद्योगिकरण के लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट होगा तभी आपकी अर्थव्यवस्था वहां पर चालू रहेगी, लोगों के लिए भी सुविधा होगी, और उसको मल्टी मोडल किस तरह से बनाया जाए, अगर रोड कनेक्टिविटी है उसे शिपिंग से कैसे जोड़ा जाए या रिवर से कैसे जोड़ा जाए, उसको एयर कनेक्टिविटी कैसे दी जाए ताकि उस क्षेत्र में न सिर्फ लोगों को सुविधा मिले जबकि जो वहां पे कृषि क्षेत्र भी है अगर वहां का जो कार्गो है उसको किस तरह से मल्टी मोडल कनेक्टिविटी का फायदा मिल सके।
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। देश का पहला वैश्विक स्तर का ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट वेब्स 2025 कल मुंबई में जियो वर्ल्ड कॉन्वेंशन सेंटर में आयोजित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 4 दिन के इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कंटेंट क्रिएटर और विभिन्न देशों को आपस में एक सूत्र में जोड़ना है ताकि दुनिया भर के निर्माता यानी कंटेंट क्रिएटर, स्टार्टअप्स, उद्योग प्रमुख और नीति निर्माताओं के लिए भारत में एक मंच विकसित हो सके। ये सम्मेलन ऑडियो विजुअल तथा मनोरंजन उद्योग के भविष्य के बारे में चर्चा के लिए वैश्विक मंच प्रदान करेगा। इसमें उभरते क्रिएटर्स के लिए अनेक सत्र आयोजित होंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य वर्ष 2029 तक 50 अरब डॉलर कारोबार संभावना को तलाशते हुए विश्व मनोरंजन अर्थव्यवस्था में अपनी पैठ बनाना है। दीपशिखा जी, हम जब कह लें कि बड़े स्तर के आयोजन होते हैं, जैसे कह लें कि कई देशों के जो फिल्म समारोह हैं या कह लें कि जो इसे कई देशों के फिल्म समारोह से ही ले लें, वो वैश्विक स्तर की बड़ी घटना होती है और वहां के यानी ऑस्कर अवार्ड की बात करें या केन्स की बात करें या जहां कहीं की भी बात करें, भारत में अभी तक उस आयाम का आयोजन हम नहीं देखते। क्या हम ये जो आयोजन है यानी कल से शुरू हो रहा है 4 दिवसीय, वो उस दिशा में एक कदम हम इसे माने?
बिल्कुल, अगर आप देखें तो अभी हमने देखा है कुछ समय से कि भारत में बड़े बड़े जो विदेशी कलाकार हैं, गायक हैं, बहुत बड़ा अभी शो जो है वो अहमदाबाद में, मुंबई में हुआ, जहाँ जो अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहां पे वो शो हुआ और पूरा वो फुल बुक्ड था जी। तो ये हुआ कि भारत में भी इस तरह के आयोजन किए जा सकते हैं और भारत की जनता जो है वो इनमें इनको देखना चाहती है, ये एक्सपीरियंस करना चाहती है। तो इस तरह का जो ये समिट होने जा रहा है तो ये आपस में एक इंटरेक्शन भी होता है ताकि और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग हैं, कलाकार हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो भी देखते हैं कि भारत में संभावनाएं क्या क्या हैं। आपस में भी उनका इंटरेक्शन होता है जो भारत के लिए लोकल जो इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत फायदेमंद रहता है।
इनफैक्ट दीप शिखर जी, इफ यू लुक एट इन द हाइंडसाइट, द बिल्डअप टू दिस इवेंट हैज बीन क्वाइट फिनोमिनल इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। इनफैक्ट फॉर द पास्ट 6 मंथ्स और सो वी हैव बीन सीइंग द बिल्डअप टू दिस इवेंट। नाउ इन द कमिंग टाइम्स द कलेक्टिव एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, ऑफ द सिटीजंस, द कंट्री, स्पेशली इन दीज काइंड ऑफ फील्ड्स, यू नो, the audio visual entertainment field has grown kind of multifold. Now, do we see in the coming days or years this event kind of generating that kind of euphoria or that kind of interest, like let's say of the Oscar level, wherein we could kind of conduct that kind of event in India itself?
Why not, actually? You know, we've seen such big concerts happening. There was so much of interest which was there in India. There was so much of euphoria around it. So now we are testing waters with this 4-day summit where, you know, there are creators coming, startups coming, policy makers. And the entertainment industry itself is seeing a lot of churn, a lot of changes in terms of technology, in terms of what kind of content people are viewing. So it is exposing, you know, Indian content creators to all these things which are there internationally. And if I could just also mention India, you know, has been a huge, it's a big supplier of a lot of content which is used by global companies in the entertainment field in terms of animation and graphics and a lot of it. So why not? We are providing this already. So I think it provides an institutional mechanism. It provides a platform to, you know, institutionalize it and also do it in a more organized manner.
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चलें वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज मिलाजुला रुख दिखा है. निवेशकों की खरीदारी से सिंगापुर के स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.7% से अधिक की तेजी आई. जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.57% लाभ में रहा. गौरतलब है कि गुरुवार को ब्याज दर के मसले पर बैंक ऑफ जापान अपने रुख का खुलासा करेगा. हांगकांग के हेंगसेंग में 0.5% की वृद्धि हुई. उधर बिकवाली के दबाव में दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.3% नीचे आ गया. इस वर्ष अप्रैल महीने में चीन में फैक्ट्री गतिविधियां इससे पिछले 16 महीनों के दौरान सबसे तेज गति से घटने संबंधी खबर आई है. एक सर्वेक्षण के बाद जारी इस खबर से चीन में विकास की गति धीमी पड़ने की आशंका तेज हो गई. इसका परिणाम यह निकला कि निवेशकों ने मुनाफा वसूली की और कारोबार के अंत में चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.23% नुकसान के साथ बंद हुआ. यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो ताजा समाचार मिलने तक प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ चल रहे थे. अंतरदिवसीय कारोबार में जर्मनी का डेक्स 0.7% से अधिक ऊपर चल रहा था. फ्रांस के कैक 40 में भी 0.7% से अधिक तेजी दिख रही थी और लंदन का फुटसी 100 भी 0.2% लाभ के साथ कारोबार कर रहा था.
एंड मूविंग ऑन टू द यूएस मार्केट्स, द यूएस स्टॉक्स एज्ड हायर ऑन ट्यूसडे इन अ चॉपी ट्रेडिंग सेशन एज इन्वेस्टर्स असेस द लेटेस्ट राउंड ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स, इकोनॉमिक डेटा एंड चेंजेस ऑन द ट्रेड पॉलिसी फ्रंट. द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज रोज ओवर 0.7%. S&P 500 मार्क्ड इट्स सिक्स्थ कंसेक्यूटिव डे ऑफ गेन्स, राइजिंग नियरली 0.6%, and Nasdaq Composite added over 0.5%. Meanwhile, on the economic data front, the U.S. trade deficit in goods widened to a record high in March as businesses ramped up efforts to bring in merchandise ahead of tariffs, while a separate report from the conference board showed its consumer confidence index slumped to a nearly five-year low in April as growing concerns over tariffs weighed on the economic outlook. However, job openings data indicated a relatively stable labor market. And the U.S. economy contracted in the first 3 months of 2025, fueling recession fears at the start of President Donald Trump's second term in office as he wages a potentially costly trade war. Gross domestic product, a sum of all the goods and services produced from January through March, fell at a 0.3% annualized pace, according to a Commerce Department report today, adjusted for seasonal factors and inflation. Deepshikha ji, this contraction and the recession fear in U.S., how do you see this panning out in the Indian markets in the coming days?
Definitely.
And I definitely think, for the world economy in general.
Yeah, yes. I think it would cause a bit of nervousness, although there is a lot of optimism around the bilateral trade agreement that both the countries are negotiating. But definitely, any recession in the U.S. economy will have implications for Indian exporters, at least the export part of the Indian economy, and also the global economy as such.
And moving on to oil, oil prices extended declines today and were set for the largest monthly drop amid weak demand, growth expectations due to the global trade war and mounting supply concerns. Brent crude was trading over 0.9% down at $63.65 per barrel. WTI crude was also down by 0.6% at $60.06 per barrel when reports last came in.
Chale Sarafa Bazaar, wahan se taza khabar ye ki sone chandi ke bhav naram chal rahe hain. अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोने का मूल्य 1.05% घटकर 94,680 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. वहीं चांदी 1.6% घटकर 95,750 रुपए प्रति किलो के स्तर पर चल रही थी. एमसीएक्स में भी सोना जून आपूर्ति वाला घटकर 94,418 पर चल रहा था. चांदी में भी नरमी थी. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से दीपशिखा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
धन्यवाद.
थैंक यू सो मच दीपशिखा जी. एंड नाउ बिफोर वी क्लोज, रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस. बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्सेस एंड नियरली अनचेंज्ड. सेंसेक्स ड्रॉप्स 46 पॉइंट्स. Nifty closes at 24,334. Cabinet approves new highway from Shillong to Silchar with outlay of 22,864 crore rupees. Also approves fair and remunerative price for sugarcane for sugar season 2025-26. And global crude oil prices continue downward trend. Brent crude trades at $63.65 per barrel. And that's it in this edition of Market from Mantra. And the entire team here is goodbye. Market Mantra.